नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमें जानकर बहुत खुशी होती है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपके आत्मिक जीवन में उन्नति हो रही है। हम यही चाहते हैं कि इसी लगन और रुचि के साथ हमारा ये कार्यक्रम सुनते रहें और पत्र लिखते रहें। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पौलुस द्वारा लिखी गई गलातियों के नाम पत्रिका विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पत्रिका मुख्य विषय है विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो शोक है करते, शांति आनंद पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन होगा धन्य जीवन। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो शोक है करते, शांति आनंद पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन होगा धन्य जीवन। धन्य है जो नम्र वो होंगे इस पृथ्वी के अधिकारी। ओ धन्य है जो नम्र वो होंगे इस पृथ्वी के अधिकारी। धर्म के भूखे और प्यासों की, धर्म के भूखे और प्यासों की यीशु प्यास बुझाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन होगा धन्य जीवन। धन्य है वो जो दयावान है, उन पे की जाएगी दया। ओ धन्य है वो जो दयावान है, उन पे की जाएगी दया। जिनके शुद्ध है मन वो, जिनके शुद्ध है मन वो परमेश्वर के दर्शन पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, करो इनका पालन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और फिर से एक बार आज परमेश्वर का वचन सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम गलातियों के पत्री उसके 6 अध्याय से अपने अध्ययन को कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि हम जो बोएंगे वही काटेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमने यह देखा कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। धोखा ना खाओ। जी हाँ, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और गलातियों के पत्री 6 अध्याय उसके 8 पद से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। तो आइए आप मेरे साथ निकाल लीजिए गलातियों के पत्री 6 अध्याय उसका 8 पद। लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। ध्यान दीजिए, अनंत जीवन की कटनी काटेगा, अर्थात इस जीवन में आत्मा का फल और भविष्य में महिमा। मेरे विचार में अधिकांश विश्वासियों को मसीह के पुनः आगमन से भयभीत होना चाहिए, क्योंकि उस समय हमें देह के कामों का लेखा देना होगा। हम उसके न्याय आसन के समक्ष उपस्थित होंगे। मेरे मित्रों, आपका उद्धार हो गया है, परंतु वह दिन आपके लिए लज्जा का कारण होगा जब आप उसके समक्ष उपस्थित होंगे और अपने कामों का लेखा देंगे। पहला योना के पत्री 2 अध्याय उसके 28 पद में कहा गया है, देह के अधीन आप देहिक बातें ही करेंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि आप उद्धार से वंचित हो जाएंगे, परंतु अति संभव है कि आप प्रतिफल से वंचित हो जाएं, जिसके कारण आपको लज्जित होना पड़ेगा। परमेश्वर ने लाल बत्ती दिखाई है, परंतु अब वह हरी बत्ती दिखाता है। गलातियों के पत्र 6 अध्याय के 9 पद में लिखा हुआ है, हम भले काम करने में हियाब न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। मुझे एक बार एक पुरुष ने कहा, मैं अपने पुत्रों के लिए परेशान हूँ। वह डॉक्टर है। उसने कहा, समय की धारा मेरे विरुद्ध है, स्कूल मेरे विरुद्ध है, अन्य बच्चों के माता पिता मेरे विरुद्ध हैं, यहाँ तक कि मेरे कुछ मित्र भी मेरे विरुद्ध में हैं, परंतु मैं अपने लड़कों को उचित रीति से बड़ा करना चाहता हूँ। मेरे मित्रों, यदि आपकी चिंता का कारण यही है तो आपको सही बीज बोने के लिए प्रोत्साहित करूँगा। धीरज धरें और आपने जो बोया है वही आप काटेंगे, परंतु सही समय पर। अतः बोते रहें। आज आपके सामने समस्या और कठिनाइयां आएंगी, परंतु परमेश्वर का वचन बोते रहें। परमेश्वर ने यशायाह नबी की पुस्तक 55 अध्याय उसके 10 और 11 पद में प्रतिज्ञा की है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। मेरे मित्रों, स्मरण रखें कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और कनान देश में उसकी संगति में रहा। उस समय कनान देश में निवासी दुष्ट थे और मूर्ति पूजक थे। वहां उसके पुत्र इसहाक का जन्म हुआ। इसहाक जब जवान हो गया तब अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा मानकर इसहाक को बलि करने के लिए मोरिया पर्वत पर ले गया, परंतु परमेश्वर ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। अब्राहम ने आत्मा का बीज बोया और अनंत जीवन की फसल काटी। मूसा की माता ने उसका जीवन बचाने की युक्ति की और राजा की पुत्री ने मूसा को गोद ले लिया। परमेश्वर का अद्भुत प्रबंध था कि मूसा की माता ही उसकी दाई बनी। इसमें दो राय नहीं कि मूसा की माता ने मूसा को परमेश्वर और परमेश्वर द्वारा अब्राहम के बुलाए जाने तथा इसराइल के लिए परमेश्वर के उद्देश्य के बारे में बताया होगा। वह अपने पुत्र को मिस्रियों के स्वरूप बड़ा होते देखी। संपूर्ण मिस्र संस्कृति, सुख सुविधा, दर्शन शास्त्र और धर्म उसके विरुद्ध था, परंतु एक दिन ऐसा आया जब मूसा ने मिस्र का सुख और पाप का त्याग किया और परमेश्वर की प्रजा में अपना स्थान लिया। जी हाँ, मूसा की माता ने जो बोया था वही काटा। यह सिद्धांत हम दाऊद के जीवन में भी देखते हैं। उसका पाप भयंकर था और बहुत लोग उसे निर्दयी और पापी मनुष्य भी कहते हैं, परंतु पाप दाऊद के जीवन का गुण नहीं था। यह सच है कि सफेद पर काला दाग दूर से ही दिखता है, परंतु काले पर काला दाग नहीं दिखता। उस युग के राजा ऐसे बुरे थे कि उनका पाप नहीं दिखाई देता था, परंतु दाऊद के जीवन में उसका पाप बहुत बड़े धब्बे के समान दिखता है। दाऊद के मन में परमेश्वर था। दाऊद ने पाप का बीज डाला और अपने पुत्र के जीवन में उसकी फसल काटी, जबकि अपने पाप के अंगीकार में वह परमेश्वर के लिए भूख और प्यास प्रकट करता है। मेरे मित्रों, हम जो बोते हैं वही काटेंगे। जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें। गलातियों के पत्र 6:10 में लिखा है, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। पौलुस कहता है कि हम भलाई करने वाले बने। मुझे समझ में आ गया है कि मुक्त विचार का धर्म भलाई करने का धर्म है। मैं भलाई करने में विश्वास करता हूँ। भलाई करने में भी आपकी नींव सही होना है। सही नींव है परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार और आत्मा में चलना। आत्मा के जीवन में आत्मा का फल लगता है। इस प्रकार मेरे मित्रों, आप भलाई करेंगे, आप सबकी भलाई करेंगे, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। अब हम गलातियों के पत्र के अंतिम भाग में आते हैं। इस भाग में 3 हस्तलिखित लेखों का उल्लेख है। पहली पौलुस की अपनी लिखाई है, आत्मकथा और उपसंहार। आइए हम पढ़ें गलातियों के पत्र 6:11 में लिखा है, देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। बड़े बड़े अक्षरों में, यह दृष्टि में विकार का संकेत है। इससे संकेत मिलता है कि पौलुस की देह का कांटा, जिसका उल्लेख उसने 2 कुरिन्थियों की पत्री 12:7 में किया है, वह उसकी आंखों की समस्या ही थी। आपको स्मरण होगा कि 4:15 में उसने कहा था, यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। मुझे पूरा विश्वास है कि पौलुस की आंखों में गंभीर समस्या थी। रोमियो को पत्र लिखते समय वह किसी से लिखवा रहा था और अंत में उसने कहा कि वह अपने शुभ कामनाएं लिख सकता है। अतः 16:22 में लिपि की टिप्पणी है, मुझ पत्री के लिखने वाले तिरतियुस का प्रभु में तुझको नमस्कार। गलातियों को पौलुस ने स्वयं अपने हाथों से लिखा, क्योंकि वह उनके व्यवहार से अप्रसन्न था। वे सुसमाचार और व्यवस्था को जोड़ रहे थे और इस प्रकार परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार पूरी तरह व्यर्थ हो रहा था, क्योंकि वह देख नहीं पाता था। इसलिए उसने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा। मेरा अंग्रेजी का शिक्षक अल्प दृष्टि था, अतः जब वह हमारे उत्तर पत्रों पर टिप्पणी करता तब वह बड़े बड़े अक्षरों में लिखता था, जिसके कारण उसकी टिप्पणी संक्षिप्त होती थी। अतः स्पष्ट है कि पौलुस का यह पत्र वैसा ही है। आगे हम देखते हैं पौलुस की गवाही। गलातियों के पत्र 6:12 में लिखा है, जितने लोग शारीरिक दिखाव चाहते हैं वे तुम्हारे खतना करवाने के लिए दबाव देते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए न जाएं। अन्य जातियों का खतना करवाने पर विवश करने के कारण यहूदी विश्वासी यहूदियों के क्रोध से अपना बचाव कर रहे थे। ये लोग उस समय के रूढ़िवादी थे। रूढ़िवाद के प्रचार से आप समस्या में नहीं पड़ेंगे। रूढ़िवाद सांसारिक मनुष्य को स्पर्श करता है, क्योंकि व्यवस्था उसे नियंत्रण करने के लिए दी गई थी। हम प्रायः सोचते हैं कि अन्यों में उपस्थित पुराना स्वभाव वश में रखना आवश्यक है। एक बार मैं अपने मित्र से सड़क के पास खड़ा अपने मित्र से बातें कर रहा था कि एक युवक अत्यधिक तेज गति से कार चलाता हुआ मोड़ पर मुड़ा। मेरा मित्र चाहता था कि उसे जेल जाना आवश्यक है, उसे नियम पालन के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। वह परमेश्वर के अनुग्रह को स्वीकार नहीं करता था। वह उद्धार से वंचित था। वह रूढ़िवादी था। प्रत्येक मनुष्य दूसरे को नियम पालन सिखाना चाहता है, जैसा कि आज हम भी करते हैं। स्पष्ट बात तो यह है कि हम उस नियम को पसंद करते हैं जिसका हम पालन कर सकते हैं। स्कूल में मैं ऊंची कूद में भाग लेता था और हमारा आरंभिक स्तर था 3.5 फुट, अतः मुझे 4 फुट ऊंचा कूदने में कठिनाई होती थी। इस कारण मैं डंडे को सदा ही 4 फुट तक रखता था। मनुष्य भी इसी प्रकार रूढ़िवाद का पालन करता है। वे बाधा को पार करना चाहते हैं, परंतु वे उसे बहुत ऊंचा नहीं रखना चाहते हैं। रूढ़िवाद अधिक प्रचलित है, परमेश्वर का अनुग्रह नहीं। मनुष्य का मन इसे घृणित समझता है। यही तो क्रूस की ठोकर है। गलातियों की पत्री 6:13 में लिखा है, क्योंकि खतना कराने वाले आप तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना कराना इसलिए चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। अन्य जातियों का खतना करवाकर यहूदी विश्वासियों को उन्हें व्यवस्था के अधीन ले आने का श्रेय प्राप्त करना चाहते थे। यह एक ध्यान देने योग्य बात है कि वे जो व्यवस्था के अधीन जीवन जीने का दावा करते हैं, वास्तव में वे व्यवस्था के पालन में सिद्ध नहीं हैं। वे जो यह कहते हैं कि वे पर्वतीय उपदेश का पालन करते हैं, ढोंग रचते हैं। मुझे अपनी सेवा में इसका अनुभव अवश्य हुआ है। एक बार जब मैंने पहली बार अपनी सेवा आरंभ की, तब मेरी कलीसिया के एक सदस्य ने, जो व्यापार मंडल में था अर्थात उसका अध्यक्ष था, मुझे उनके एक समूह में प्रवचन के लिए आमंत्रित किया गया। मैं समय से पूर्व ही वहां पहुंच गया। वक्ता के स्थान पर वहां एक व्यक्ति बैठा था। उसने मुझसे वार्तालाप आरंभ कर दिया। वह अपशब्दों का उपयोग कर रहा था। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। उसने अंत में मुझसे पूछा, आपका व्यवसाय क्या है? तब मैंने उसे बताया कि मैं एक प्रचारक हूँ। उसने मुझे आश्चर्य से देखा और पूछा, क्या आज के वक्ता आप हैं? मैंने कहा, जी हाँ। तो वह तुरंत रुख बदला हुआ बोला, आपको यहाँ देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। मैं भी मसीही विश्वासी हूँ। मेरे लिए यह आश्चर्य की बात थी, क्योंकि उसकी भाषा से तो वह विश्वासी नहीं लगता था। उसने मुझे यह भी बताया कि वह किस कलीसिया का सदस्य है, और अंत में उसने कहा कि वह पर्वतीय उपदेश का धर्म मानता है। और मैंने कहा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। और उससे हाथ मिलाकर पूछा, आप उसमें कैसा निर्वाह कर रहे हैं, अर्थात किस प्रकार जीवन बिता रहे हैं? वह उलझन में पड़ गया और पूछा, आपके कहने का क्या अर्थ है कि मैं कैसा निर्वाह कर रहा हूँ? मैंने उसे समझाया, आपने कहा कि आप पर्वतीय उपदेश अर्थात पहाड़ी उपदेश का धर्म मानते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जीवन क्या वैसा ही है? उसने कहा कि प्रयास करता हूँ, परंतु पर्वतीय उपदेश तो यह नहीं है। उसकी अनिवार्यताएं तो बहुत कठिन है। उसमें प्रयास करने का तो स्थान ही नहीं है। या तो आप उसे करें या ना करें। आपने कहा कि वह आपका धर्म है, तो मैं यह मानता हूं कि आप उस पर आचरण करते हैं। उसने मुझे आश्वासन देना चाहा कि वह निश्चय ही प्रयास कर रहा है। मैंने उससे पूछा, क्या आप उस पर आचरण करते हैं? उसने कहा, मेरी समझ में तो मैं उस पर आचरण करता हूँ। आइए हम देखते हैं कि आप उस पर आचरण करते हैं या नहीं। प्रभु यीशु ने कहा कि यदि आप अपने भाई से क्रोधित हैं, तो आपने मानो उसकी हत्या कर दी। आप इसे कैसे स्वीकार करते हैं? उसने झिझकते हुए कहा, मुझे इसमें कठिनाई होती है, परंतु मैं सोचता हूँ कि मैं संभाल लेता हूँ। यीशु ने यह भी कहा था कि किसी स्त्री को लालसा से न देखना, अर्थात किसी को बुरी दृष्टि से देखना व्यभिचार है। इस विषय पर आप क्या करते हैं? उसने कहा, ओह, यहाँ तो मैं चूक जाता हूँ। मैं सोच रहा था ऐसा ही होगा। मैंने उससे कहा, आप वास्तव में पहाड़ी उपदेश का धर्म नहीं निभा रहे हैं। यदि मैं आपके स्थान पर होता, तो अपना धर्म बदल कर वही धर्म अपनाता जिसे मैं निभा पाता। आपने देखा वह क्या था? वह ढोंगी था। वह पहाड़ी उपदेश पर आचरण का दावा करता था, परंतु प्रत्येक मोड़ पर उसे तोड़ता था। उसे परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता थी। आज कलीसियाओं में असंख्य लोग ऐसे ही हैं, असंख्य मनुष्य ऐसे हैं। पौलुस इस कथन द्वारा यही कहना चाहता है। गलातियों के पत्र 6:14 में हम आगे पढ़ते हैं, पर ऐसा न हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। पौलुस और संसार के मध्य एक क्रूस था। आज प्रत्येक विश्वासी को भी यही करना है। इससे आपके आचरण का सुगठन होगा और आप गर्व नहीं करेंगे कि आप किस कलीसिया के सदस्य हैं या आपकी कलीसिया में कौन सा स्थान है, या आप प्रचारक हैं या पदाधिकारी हैं या संडे स्कूल के शिक्षक हैं। आप किसी बात पर घमंड नहीं करेंगे। आप केवल क्रूस और क्रूस पर मरने वाले का महिमान्वन करेंगे। गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसके 15 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है परंतु नई सृष्टि। इन अंतिम पदों में यह दूसरा हस्तलेख है। धर्म और व्यवस्था का हस्तलेख खतना था। यह देह पर लिखा गया लेख था। यह अब्राहम की वाचा का प्रतीक था। इससे वास्तव में कोई लाभ तो था नहीं। किसी समुदाय का चिन्ह पहनने से कोई अर्थ तो निकलता नहीं है। मसीह में न तो खतना और न ही खतना रहित किसी काम का है। खतना रहित रहने से भी कोई लाभ नहीं। इनसे किसी भी प्रकार का लाभ नहीं है। जी हाँ, आज बहुत से विश्वासी गौरव से कहते हैं कि मन परिवर्तन से पूर्व वे बहुत बड़े पापी थे। खतना करना या न करना महत्व नहीं रखता है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि क्या पवित्र आत्मा ने आपके जीवन में प्रवेश करके आपको मसीह में नई सृष्टि बनाया है। यह केवल मसीह में विश्वास के द्वारा ही संभव हो सकता है। यदि पौलुस सुसमाचार को धर्म क्षेत्र में स्पर्धा स्वरूप प्रचार करता तो रूढ़िवाद उसके लिए कठिनाई उत्पन्न नहीं करता। मैं आपको एक उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। बाजार में तरह तरह के साबुन हैं। विक्रेता आपको उनके अनेक गुण बताते हैं। अब हम एक नया साबुन बनाते हैं जिसका नाम हमने रखा है स्वच्छ, क्योंकि साबुन का उद्देश्य ही स्वच्छता प्रदान करना है। अतः हमारा नारा है, स्वच्छ खरीदो और स्वच्छ हो जाओ। इससे तो हम समस्या में पड़ जाएंगे। अन्य साबुन निर्माता विद्रोह करेंगे। पौलुस सुसमाचार के बारे में यही कहता है। यदि वह कहता कि यहूदी धर्म बहुत अच्छा है परंतु मसीह विश्वास और भी अच्छा है तो उसे समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। आज विज्ञापन में यही कहा जाता है कि हमारा साबुन अन्य साबुनों से अच्छा है। यह स्पर्धा है। कोई यह कहने का साहस नहीं करता कि उनका साबुन ही काम करता है। ध्यान रखें कि पौलुस नहीं कहता है कि उसका साबुन यहूदियों के साबुन से भी अच्छा है। वह तो स्पष्ट कहता है कि यहूदी धर्म कुछ नहीं, खतना कुछ नहीं। वह कहता है कि आपके जीवन में केवल पवित्र आत्मा का लेख जो आपको नया स्वभाव देता है, वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मेरे मित्रों, यह एक खरी बात है। अब तीसरा और अंतिम हस्तलेख आता है। गलातियों के पत्र 6 अध्याय उसके 16 और 17 पद में हम पढ़ते हैं, और जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इसराइल पर शांति और दया होती रहे। आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। ध्यान दीजिए, दागों, दागों शब्द पर ध्यान दे, दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। यदि आप यीशु का हस्तलेख देखना चाहते हैं तो पौलुस की देह को देखें। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय उसके 23 से 27 पद में पौलुस कहता है, क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथों से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेते खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में। ये सब कष्ट जो उसने मसीह यीशु के लिए उठाए उसकी देह पर दाग छोड़ गए थे। पौलुस के युग में दाग तीन प्रकार से दिए जाते थे। भागा हुआ दास जब पकड़ कर लाया जाता था तब उसके माथे पर चिन्ह दागा जाता था। सैनिकों के माथे पर उनके कमांडर का नाम छापा जाता था। देवियों के नाम माथे पर छापे जाते थे। अतः पौलुस कहता है कि मेरी देह पर प्रभु यीशु के चिन्ह है। दूसरे शब्दों में उसका कहने का वास्तविक अर्थ था, मैंने तुम्हें गहरी भावना और विश्वास के साथ लिखा है। यदि तुम यह जानना चाहते हो कि जो मैं कहता हूँ वही मेरा विश्वास है और मेरे जीवन का सत्य है, तो मेरी देह पर दागों को देखो। जब मैं छोटा था तब मैंने देखा कि बहुत सारे मवेशियों को दाग लगाए जाते थे और जिसके द्वारा से वे पहचाने भी जाते थे। मेरे मित्रों, खतना केवल एक बाहरी चिन्ह है, उसका वास्तविक अर्थ कुछ भी नहीं है। परंतु पौलुस मसीह की छाप को अपनी देह और अपने जीवन में लिए फिरता है। मुझे विश्वास है कि प्रभु यीशु आज भी झुककर लिखता है, मंदिर के फर्श पर नहीं, अपने लोगों के जीवन पर। उसका दाग अनंत काल के लिए हमारे हृदयों पर दागा गया है। क्या हम गर्व के साथ उसका दाग लिए हुए हैं? क्या हम मसीह यीशु के लिए निंदा सहने की इच्छा रखते हैं? आइए हम पढ़ें गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसके 18 पद में, जो इस पत्री का अंतिम पद है। लिखा है, हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे, आमीन। पौलुस इस अद्भुत पत्र के अंत में भाइयों को परमेश्वर के अनुग्रह के सुपुर्द कर देता है और उन्हें आशीष देता है। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और इस रीति से हम गलातियों की पत्री का भी समापन करते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि इस पत्री के अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में नई बातों को सीखा है। और मैं आशा करता हूँ कि इस अध्ययन के द्वारा आपने जिन बातों को सीखा है उसे आप अपने जीवन में लागू करेंगे। प्रभु करे कि आप निरंतर परमेश्वर की संगति में उसके डर और भय में अपने जीवन को बिता सकें। इस अध्ययन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
वो जो मेल मिलाप कराए प्रभु के पुत्र वो कहलाए, वो जो मेल मिलाप कराए प्रभु के पुत्र वो कहलाए, प्रभु के कारण जाए सताए, प्रभु के कारण जाए सताए, स्वर्ग का राज्य वो पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन, करो इनका पालन। धन्य है वो जो मन के दीन है, धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जा